मेरे अभिन्न युवा मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं कला की भूमिका, इस विषय पर आप सबसे बातें करने जा रहा हूं। और चूंकि इस बीच कोई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई है, तो मैं सीधे सीधे विषय पर ही आता हूं, कला की भूमिका। और जब मैं भूमिका की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली कला की एक सामाजिक भूमिका की बात कर रहा हूं। आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस में कला, साहित्य और संस्कृति शामिल है। जब हम कला, साहित्य और संस्कृति की बात करते हैं, तो हम सीधे सीधे एक प्रकार से इतिहास विषय से जुड़ जाते हैं। और इस विषय को पाठ्यक्रम में रखने का मतलब ही यही है कि एक जो सिविल सर्वेंट है, उसे अपने देश की जो कला, साहित्य और संस्कृति है, उसकी जो मूलभूत बातें हैं, उनका ज्ञान होना ही चाहिए। पहली बात तो सीधे सीधे ये आपके एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ विषय है। दूसरी बात कि अभी तक ज्यादातर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी उम्मीद की जा सकती है कि अगर कला, साहित्य, संस्कृति में कोई बात बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई है एक डेढ़ साल के दौरान आपके एग्जामिनेशन की डेट से, तो उसके पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। और खासकर इस तरह के प्रश्न इससे पहले पूछे भी गए हैं, जैसे कभी फिल्मों को लेकर के विवाद हो जाता है, आपने देखा। कभी कभी कोई वेब सीरीज है, उसको लेकर के विवाद हो जाता है। कभी कभी सेंसर बोर्ड के माध्यम से विवाद खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में घटती रहती हैं, उन पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर इस पैरामीटर पर हम विचार करें, तो पाएंगे कि द कश्मीर फाइल जो अभी फिल्म आई है, वो काफी विवादास्पद हो गई है। विवादास्पद तो नहीं कहनी चाहिए, आप यूं कह लीजिए कि वो एक बहस का मुद्दा बन गई है, राइट? तो मैं इसी को केंद्र में रख करके और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको ध्यान में रखते हुए बात कह रहा हूं। मैं जो यहां बातें रख रहा हूं, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये मेरी अपनी बातें हैं। नहीं, मैं इसे विशुद्ध तौर पर एक एकेडमिक दृष्टि से, और जो आपकी जरूरत है, आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट बनने के इच्छुक युवा के रूप में, मैं उसे आधार मानकर चल रहा हूं। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स, जो भी इस पर विवाद हो रहे हैं, जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में, उन सब से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। ये जो फिल्म बनी है, आप जानते हैं 1990 में खासकर कश्मीर घाटी में रहने वाले जो पंडित थे, स्पेशली पंडित कहा जा रहा है, वैसे वो हिंदुओं के खिलाफ था, लेकिन चूंकि वहां कश्मीरी पंडित ही ज्यादा थे, तो इसीलिए शब्द हो गया है कि कश्मीरी पंडित। वहां जब आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा हावी हो गई, तो उनका पर्पज यही था कि यहां जो भी हिंदू हैं उन्हें यहां से निष्कासित कर दिया जाए और पूरी तरह से कश्मीर घाटी मुस्लिमों के आधिपत्य में आ जाए, आतंकवादियों के कहना चाहिए आधिपत्य में आ जाए। तो इसको आधार बना करके उन लोगों ने जो वहां हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, उन पर अटैक करना शुरू किया, वार्निंग जारी की कि आप लोग यहां से चले जाइए, नहीं तो हत्या कर दी जाएगी, ये कर दी जाएगी। बहुत लोग छोड़ करके आ गए, बहुत लोगों की हत्या की गई, उन्हें डराया भी गया। और ये जो फिल्म है, वो उसी घटना को दर्शाने वाली फिल्म है, राइट? इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब ये फिल्म बन करके आई, तो फिर इस पर बातचीत शुरू हुई। और खासकर चूंकि ये हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों के, आप तरह से कह लीजिए, आतंक की कथा थी, तो इसे एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जाने लगी। बात राजनीतिक थी नहीं, लेकिन जिस तरीके से बातें उठने लगी, तो इसने एक पॉलिटिकल कलर ले लिया और ये माना जाने लगा कि द कश्मीर फाइल्स बेसिकली एक प्रोपेगंडा फिल्म है। दूसरी तरफ अलग तरह की बातें उठने लगी। एक वर्ग कह रहा है प्रोपेगंडा फिल्म है, तो दूसरा वर्ग कह रहा है कि बहुत अच्छी बात है, यह घटनाओं की सच्चाई को सामने ला रहा है। अगर हम इतिहास से आंखें मूंद करके रहेंगे, तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा और आगे जाकर के भविष्य बुरा हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि जो बातें सही हैं वो सामने लाई जाए, ताकि उनका निराकरण किया जा सके। तो दो वर्ग स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ खड़ा हो गया। ये तो विवाद की बात हुई। अब मैं इसके दूसरे पक्ष पर आता हूं। देखिए, जो कला है, कला का क्या रोल समाज में होता है, इसको लेकर के भी दो बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग वर्ग हैं। एक वर्ग वह है जो विशुद्ध रूप से यह मानता है कि जो कला है, जब मैं कला कह रहा हूं ना, तो उसमें आप सभी बातों को लेकर के चलिए। शुरुआत मैंने फिल्म से की है, साहित्य, नृत्य, गीत, फिल्म, अभी आप उसमें फिल्म को जोड़ सकते हैं, स्थापत्य कला, ये सब के सब कलाओं के अंग हैं। तो मैं व्यापक रूप में ये बात कह रहा हूं। तो ये कला के जितने भी रूप हैं ये बेसिकली मनोरंजन के लिए बने हैं, मनुष्य के मन का रंजन करने के लिए बने हैं और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। हम देखते हैं, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो उठता है, बात खत्म हो गई। बस कला का यही उद्देश्य है। जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा वर्ग है, उसका कहना है कि नहीं, कला का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है। मनोरंजन हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मनोरंजन करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसकी एक सामाजिक भूमिका होती है। सामाजिक भूमिका होती है, कहने का मतलब है कि जो कला के रूप होते हैं उन्हें चाहिए कि वो समाज को शिक्षित करें, समाज को सही स्थितियों से अवगत कराएं, समाज को सतर्क करें और समाज के विकास में अपना योगदान दें। ऐसा नहीं कि मनोरंजन किया और बात खत्म हो गई। जो पहला वर्ग है उसे कहा गया आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि जो कला है वो सिर्फ कला के लिए है। और अभी जिसकी मैंने बात की, जो दूसरा वर्ग है, उसने कहा कि नो, आर्ट इज नॉट फॉर आर्ट सेक बट आर्ट इज फॉर सोसाइटी सेक। ये समाज के लिए कला होती है, ठीक है। जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने बेसिकली कला को एक प्रकार से हथियार माना, समाज के परिवर्तन का एक हथियार, यानी कि कला के माध्यम से लोगों की चेतना को ऐसा बनाया जा सकता है, ऐसा विकसित किया जा सकता है, ऐसा रूप दिया जा सकता है कि वे क्रांति के लिए आगे आएं, अपने शोषण के खिलाफ वो खड़े हो सकें और इस तरीके से समाज में समानता की स्थापना हो सके। तो कार्ल मार्क्स ने इसे एक वेपन के रूप में लिया, एक हथियार के रूप में लिया, या कह लीजिए सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया। मेरी समझ से यहां तक स्थिति आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी कथा जो आपको बहुत कम पढ़ने को मिलती होगी, शायद ही पढ़ने को मिले। दोस्तों, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ऋषि उन्हें कहा जाता है। हमारे यहाँ देखिए, जो पहले फिलॉसफर हुए थे, ऋषि मुनि ही फिलॉसफर कहलाते थे, या यूं कह लीजिए फिलॉसफर ही ऋषि मुनि कहलाते थे, कहना ज्यादा सही होगा। भरत मुनि, भरत मुनि नाम आपने शायद सुना हो, अगर नहीं सुना हो तो आपको मालूम होना चाहिए, इतिहास में आप पढ़ेंगे भरत मुनि। उन्होंने एक रचना की नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र यानी नाटक का विज्ञान, और उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से नाटक के बारे में बातें की हैं, नाटक कैसे तैयार किए जाते हैं, मंच कैसे होने चाहिए, कौन कौन से दृश्य नाटक में दिखाए जाने चाहिए, क्या क्या उसके अंग होते हैं, बहुत ही विस्तार के साथ उन्होंने नाटक के बारे में चर्चा की है। यहां तक तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले की कथा हमें नहीं पढ़ाई जाती। कथा ये है कि जब इंद्र असुरों के उत्पात से बहुत परेशान हो गए, असुर राज्य में उधम मचाने लगे, तो उनको लगा कि भैया इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इंद्र भरत मुनि के पास पहुंचे। ये बहुत ऋषि मुनि थे, तो पहुंचे कि बोले कि बताइए अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो मैं ये चाहता हूं कि इन्हें शिक्षित किया जाए, इन्हें समझाया जाए कि ये चीजें ठीक नहीं है जो तुम उत्पात मचाते हो। तो भरत मुनि ने कहा कि हाँ ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इनके लिए नाटक लिखे जाएं, ये सब नाटक देखेंगे और नाटक देखने के बाद फिर ये अपने कर्तव्यों को समझ सकें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको समझ सकेंगे तो शायद ये कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इस उद्देश्य से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। ये कथा छोटी सी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके आधार पर आपको क्या लगता है कि कला की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो आपको साफ लगेगा कि नहीं, कला की जो भूमिका है वो दूसरी वाली भूमिका है, यानी कि लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करना कला का दायित्व होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक, चूंकि मुझे एक ही लेक्चर में काफी कुछ समेटना है तो अब मुझे थोड़ी सी तोड़ तोड़ करके बातें करनी पड़ेंगी। आप अपने ढंग से अपना विचार बना लीजिए कि जो आप चाहते हैं। फिल्मों में आप देखिए कि फिल्मों में आपको हर तरह की फिल्में मिलेंगी, आपको कमर्शियल फिल्में मिलेंगी, बेतुकी फिल्में मिलेंगी, लेकिन वो सुपरहिट हो रही हैं, लेकिन आपको बकायदे आर्ट फिल्में भी मिलेंगी जो सामाजिक दृश्य को दिखाती हैं, सामाजिक यथार्थता को व्यक्त करती हैं, ऐसी फिल्में मिलेंगी, भले ही वो कमर्शियली फ्लॉप फिल्में हो जाएं, लेकिन उनका समाज में बहुत बड़ा रोल होता है, वो लोगों को सोचने के लिए बाध्य करती हैं। इसलिए कहा गया कि जब आप नाटक देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो उसमें खुश होकर के निकलने की बात नहीं है, इनमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपको सोचने के लिए बाध्य कर दें। आपको रात में आराम से सोने देने वाली फिल्में नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि जो आपको कुरे दें, आपको सोने न दें, इस तरह की कला होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा कश्मीर फाइल्स के संदर्भ में आऊंगा। एक किताब लिखी है एक जर्नलिस्ट ने, अशोक पंडित उनका नाम है, माई मून हैज ब्लड क्लॉट्स, कुछ इस तरह का नाम है उनकी किताब का। जब उनसे कश्मीर फाइल्स के बारे में बात की गई तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था, और चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अच्छा है, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि यह लोगों के विरेचन का काम करती है, लोगों के विरेचन का काम करती है। अगर आपने ये पढ़ा हो तो यह विरेचन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कश्मीरी फाइल्स के संदर्भ में। यह बहुत ही मौजू बात उन्होंने कही है, बहुत ही सटीक बात उन्होंने कही है। अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, है ना, यूनान के महान दार्शनिक थे अरस्तु। अरस्तु ने इस शब्द का प्रयोग किया था, विरेचन शब्द का। तो होता यह था कि ग्रीक में, उस समय के यूनान में, बेसिकली ट्रेजेडिक नाटक ही खेले जाते थे। वो नाटक ऐसे होते थे जो दुखांत होते थे, जिनका अंत दुख में होता था। भारत में दुखांत की परंपरा नहीं है, भारत में सुखांत की परंपरा। आप हमारी कहानियां पढ़िए, फिल्में देखिए, तो अंत में आखिरी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, आपको फील गुड होता है कि यार चलो अच्छा हो गया, ठीक हो गया। लेकिन पुराने ग्रीक में ऐसा नहीं था, वो ट्रेजेडिक नाटक खेले जाते थे। तो इसके बारे में अरस्तु ने विरेचन का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने जो रंगशाला है, यानी कि जहां थिएटर दिखाए, नाटक दिखाए जा रहे हैं, उनको अस्पताल माना था, चिकित्सालय माना था। किस तरीके से, उन्होंने ये कहा कि जब दर्शक इस तरह के ट्रेजेडिक ड्रामा देखने आते हैं, तो होता क्या है कि अब रंगमंच पर दुख 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 आ रहा है, तो वो खुद भी दुखी हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं, खूब रोने लग, दर्शक भी रोने लगते हैं, खूब रोने लगेंगे, आंसू निकलने लगेंगे, खूब रोएंगे। और फिर जब नाटक खत्म हो जाता है और जब वो रंगशाला से बाहर आते हैं, तो बड़ा हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो दुख दर्द था उनके आंसुओं के साथ बाहर निकल चुका होता है। इसे उन्होंने कहा कि विरेचन, यानी कि उनके चेतना में जो दुख बैठा हुआ था वह आंसुओं के साथ खत्म हो जाता है, बाहर आ जाता है, और वो बड़ा फील गुड करते हैं, गुड फील होता है उनको, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो उनका दुख कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उन्होंने कहा था कि इसका स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी संदर्भ में अशोक पंडित ने यह बात कही, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के उस समय की इस तरह की घटनाओं से पीड़ित रहे हैं, या उनकी पीड़ाओं को जो सुनकर के पीड़ित रह रहे हैं, जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, और दुख तो हो ही रहा है, पूरे हिंदुस्तान को हो रहा है, हिंदुस्तान को क्या, दुनिया के लोगों को भी हुआ होगा, इस तरह की घटनाओं का कौन समर्थन करेगा, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म वाले के खिलाफ हुई घटना क्यों ना हो, कोई समर्थन नहीं करेगा। तो जब लोग इस फिल्म को देखेंगे तो कम से कम उन्हें अपना दुख कम मालूम पड़ने लगेगा, इसको देखने के बाद वो अपने को हल्का महसूस करेंगे। इसी को आधार बना करके उन्होंने कहा कि ये विरेचन का काम करेगी। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि थोड़े से समय में अलग अलग डायमेंशन पर जो बातें की जा सकती थी वो मैंने करने की कोशिश की है, और डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कला से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो जो बातें मैंने कही हैं ये आपके पक्के तौर पर कुछ न कुछ काम आएंगी ही। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से और अबू होरेरा, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं विराम देने की अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।